आज बहुत ही विशेष दिन है। कल ही हमने नरसिंह जयंती, नरसिंह चतुर्दशी मनाई है और वही नरसिंह भगवान ब्रज में एक बहुत ही सुंदर, मीठे, मुस्कुराते हुए रूप में प्रकट होते हैं, राधा रमन देव जी के सुंदर रूप में। कितना विशेष है। एक जगह हिरण्यकश्यपु जैसे बड़े दानव को मारने के लिए आते हैं और ब्रज में अपने भक्तों को जो मीठा माधुर्य प्रेम है वो प्रदान करने के लिए या वो दिखाने के लिए प्रकट होते हैं, बड़ा ही विशेष है ये। इससे भगवान कितने पर्सनल है, कितने हर एक भक्त के साथ कैसा उनका एक व्यक्तिगत संबंध है ये समझ में आता है। भगवान के कितने महान भक्त है जो आचार्य है, उनका आज जैसे परमेश्वरी दास ठाकुर, उनका तिरोभाव दिवस है, फिर माधवेंद्रपुरी इनका आविर्भाव है, श्रीनिवास आचार्य इनका भी आविर्भाव है और फिर राधा रमन देव जी का भी आविर्भाव है। वैशाख महीने की पूर्णिमा है, बड़ा विशेष दिवस है ये। इतने सबने यही दिन चुना है प्रकट होने के लिए और अप्रकट होने के लिए भी। हाँ, फूल डोला भगवान की, कृष्ण भगवान की लीला है। तो आज सुबह हम सुन रहे थे, एक प्रभुपाद जी का कोट पढ़ रहे थे जनार्दन महाराज, उसमें वो कह रहे थे, प्रभुपाद मतलब बोल रहे थे कि हमें जो कुछ चाहिए भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो सब कुछ, सारी अपॉर्चुनिटी, सारी सुविधा दी गई है, लेकिन हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि हम उसका उपयोग नहीं करते या फायदा नहीं उठाते। दैट इज़ आवर मिसफॉर्चून, प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे दुर्भाग्य है कि सब कुछ हमारे सामने दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं रहे। इतने महान आचार्य आए हैं, उन्होंने इतने सुंदर तरीके से अपने जीवन आचरण से, अपनी भक्ति से, अपने प्रचार से उन्होंने ये शुद्ध दिव्य कृष्ण प्रेम का जो मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, हम सब तक पहुंचाया है। हम सुनेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हर एक आचार्य के बारे में हम सुनने जाए तो जितना सुने उतना कम है, क्योंकि उनके एक दिन के बारे में भी हम सुनने का प्रयास करें तो इतना अगाध है। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके एक कोई चलना हो या बोलना हो या कोई भी कार्य हो उसके बारे में वर्णन कितना भी किया जाए कम ही होता है, क्योंकि वो पूरे प्रेम से भरा हुआ होता है। उसमें कृष्ण के प्रति प्रेम या जीवों के प्रति करुणा, ये सब भरी होती है उसमें। तो हम कितना भी उसके बारे में सुनने का प्रयास करें उतना कम पड़ जाता है। और आज तो इतने सारे आचार्यों के बारे में हमें मतलब सुनना चाहिए, तो जो समय हमारे पास है वो तो बहुत ही कम है। हम किसी के बारे में शुरू करें तो पता चले 9 बज रहे हैं लेकिन हम कुछ कुछ अंश मात्र में हम कुछ सुनने का प्रयास करेंगे सभी के सभी आचार्यों के बारे में, और कुछ हमारे जीवन में उनके जीवन के माध्यम से प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा ये दिन जो हम उनको याद कर रहे हैं ये सफल होगा। ऐसे बताया जाता है, यदि कोई परमेश्वरी दास ठाकुर ये नाम भी सुनते हैं तो उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो कितनी करुणा है, देखिए ये जो वाक्य बताया गया है, बोला गया है, वो भी कितने करुणा से बोला गया है, और कितने गुणों को अपने हृदय में रखते हुए परमेश्वरी दास ठाकुर के गुणों को और दिव्य भक्ति को मन में रखते हुए ये वाक्य बाहर निकला है भक्त के मुंह से। कहते हैं कि यदि कोई सिर्फ नाम भी सुनते हैं परमेश्वरी दास ठाकुर का तो उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो सोच सकते हैं कि कैसे भक्त होंगे। ऐसे वर्णन आता है चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरतामृत में भी आता है वर्णन, बताते हैं कि परमेश्वरी दास ये श्री नित्यानंद प्रभु के संगी थे, और जैसे नित्यानंद प्रभु के लिए परमेश्वरी दास ठाकुर उनके प्राण थे। कोई हम कह सकते हैं कि हाँ भगवान हमारे प्राण हैं, लेकिन जब भगवान किसी को अपने प्राण मानते हैं मतलब वो कैसे भक्त होंगे। ऐसे बताया जाता है कि परमेश्वरी दास ये द्वादश गोपाल में से एक है, पांचवे गोपाल जिनका नाम है अर्जुन सखा। ये अर्जुन सखा ये परमेश्वरी दास ठाकुर के रूप से चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट होते हैं, और हमेशा से वो दिव्य प्रेम जो एक सखा का प्रेम होता है उस प्रेम में हमेशा निरंतर रहते थे। और उन्होंने बहुत सुंदर बाद में जानवा माता जी की भी उन्होंने बहुत सेवा की, उनके बारे में इतना ज़्यादा मतलब हमें वर्णन प्राप्त नहीं होता, लेकिन इतना बताया गया है कि जब खेतुरी ग्राम में पहला गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल मनाया गया था जानवा माता जी के द्वारा, तब परमेश्वरी दास ठाकुर भी वहाँ पे थे अन्य भक्तों के साथ, बहुत सुंदर वो उत्सव उन्होंने मनाया था। उस उत्सव में साक्षात चैतन्य महाप्रभु अपने जितने भी संगी वापिस चले गए थे उन सबको लेकर प्रकट होते हैं, ताकि हर एक भक्त के हृदय में जो पीड़ा है कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और सारे जो संगी है वो सब है नहीं, अब चले गए हैं, उन सबको लेकर चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ताकि हर एक के हृदय में जिनको जिनको देखने की इच्छा थी, जिनका जिनका संग प्राप्त करने की इच्छा थी, उनके उन्हें संग प्राप्त हो, दर्शन हो। बहुत सुंदर इस प्रकार से परमेश्वरी दास ठाकुर के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन प्राप्त होता है हमें शास्त्रों में। परमेश्वरी दास ठाकुर ये एक आठपुरा नाम का गांव है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, ये हावड़ा और आमटा ये दो जो रेलवे स्टेशन है उसके बीच में आता है आठपुरा। वहाँ पे आप आज भी जाओगे तो वहाँ पे राधा गोपीनाथ जी के सुंदर विग्रह हैं जिनकी सेवा परमेश्वरी दास ठाकुर जी ने की है, और एक राधा गोविंद जी का भी मंदिर है वहाँ पे। उसी मंदिर के सामने दो बकुल के वृक्ष है और एक कदम का वृक्ष है, इन दोनों वृक्ष और कदम वृक्ष के बीच में समाधि बनी हुई है परमेश्वरी दास ठाकुर जी की, एक छोटा सा टूम जैसे बनाया है, और ऊपर तुलसी महारानी का मंदिर है, मतलब तुलसी महारानी विराजमान है, और नीचे उनकी समाधि है। तो बहुत दिव्य जगह है वो, जहाँ परमेश्वरी दास ठाकुर जी की समाधि है। हम वो तो नित्य संगी है भगवान के, आज उनका हम स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि थोड़ा अंश मात्र हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो, तो ज़रूर उनकी कृपा से हमारे हृदय में वो प्रेम प्राप्त होगा। और आज माधवेंद्रपुरी जी का भी आविर्भाव है। माधवेंद्रपुरी जी के बारे में तो हमने सुना है, जब से चंदन यात्रा चल रही है तब से हर एक के मन में माधवेंद्रपुरी पाद जी का स्मरण है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये चंदन यात्रा शुरू हुई है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होना था, उसके पहले श्री चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य पार्षदों को इस धरती पर भेजते हैं, जैसे माधवेंद्रपुरी, फिर ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य और भी बहुत सारे संगी इनको भेज देते हैं पहले प्रिपेयर करने के लिए वातावरण को, ताकि श्री चैतन्य महाप्रभु खुद अवतरित हो। माधवेंद्रपुरी पाद बहुत विशेष स्थान है उनका गौड़िया वैष्णव परंपरा में। उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति वृक्ष बनाया है, उसके जड़ मूल माने जाते हैं माधवेंद्रपुरी, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु देने आए थे उसकी शुरुआत माधवेंद्रपुरी पाद ने कर दी थी। माधवेंद्रपुरी पाद उन्होंने लक्ष्मीपति तीर्थ, जो माधव संप्रदाय में आचार्य है, उनसे दीक्षा प्राप्त किए थे। और माधव संप्रदाय में माधुर्य भक्ति नहीं है, वहाँ पे ऐश्वर्य भक्ति ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन माधवेंद्रपुरी ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने वो झलक दिखाई है माधुर्य भक्ति की। अब माधवेंद्रपुरी जी के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसके बारे में तो हमने बहुत लीलाएं सुनी हैं कि कैसे वो वृंदावन में जब आए थे और गोविंद कुंड के पास थे, अपने भजन में मग्न थे, तो साक्षात गोपाल वहाँ पे आते हैं, ये समझते हुए कि सुबह से भजन करते हुए यहाँ बैठे हैं, लेकिन कुछ उन्होंने खाया नहीं है, तो गोपाल जी स्वयं आते हैं, दूध मटका भर के दूध लेके आते हैं और उनको देते हैं, कहते हैं कि हमारी जो जगह है, हमारा जो गांव है, यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहता, और क्योंकि आप सुबह से यहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं और किसी से कुछ नहीं मांगा आपने, तो इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम आके आपको प्रदान करें। तो भगवान स्वयं उस जिम्मेदारी को लेते हुए और जाके उनको वो दूध देते हैं, और जब माधवेंद्रपुरी पीते हैं उस दूध को, वो तो समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि और बहुत सारे ग्वालों की तरह ये भी एक ग्वाल बाल है, वो ये नहीं समझ पाते कि साक्षात गोपाल है, कृष्ण है, जो मुझे दूध प्रदान करने के लिए आए हैं। वो तो बस उस दूध को स्वीकार करते हैं, और जब स्वीकार करते हैं उसका जो स्वाद होता है वो अमृत से भी मीठा होता है, ऐसा दूध उन्होंने कभी नहीं पिया था। वो सोचते हैं कितना विशेष है दूध। तो दूध पीने के बाद, क्योंकि वो बालक कहते हैं कि मैं मटका वापस लेने के लिए आऊँगा, तो वो रखते हैं संभाल के कि वो बालक आएगा, मैं उसे उसका मटका दे दूँगा, लेकिन बालक आते ही नहीं। भजन करते करते वैसे ही उनको नींद आ जाती है, सो जाते हैं, तो स्वप्न में गोपाल जी फिर प्रकट होते हैं, और जब गोपाल जी को वो देखते हैं स्वप्न में, तब उन्हें समझ में आता है कि अरे वो जो बालक आए थे वो कोई ग्वाल बाल नहीं थे, वो तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वो आए थे। तो बाद में उस मटके का छोटे छोटे टुकड़े करके वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि साक्षात गोपाल ने वो मटका दिया है उनको, तो तो उस मटके का थोड़ा थोड़ा अंश हर दिन वो प्राप्त करते थे प्रसाद के रूप में। तो माधवेंद्रपुरी जी का बड़ा ही विशेष योगदान है, और फिर वो गोवर्धन की अन्नकूट लीला ये भी माधवेंद्रपुरी जी की वजह से ही है, क्योंकि उन्हें ही स्वप्न में गोपाल जी आते हैं स्वयं फिर से स्वप्न में और कहते हैं कि मुझे यहाँ गोवर्धन के झाड़ियों में छुपा के रखा हुआ है, बहुत सालों से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मुझे निकालो और गोवर्धन के ऊपर मुझे स्थापित करो। तो इस लीला के बारे में भी हम सुनते हैं कि कैसे भगवान स्वयं स्वप्न में आके आदेश दे रहे हैं माधवेंद्रपुरी को एक एक सेवा करने के लिए, और फिर उनको भेजा जाता है जगन्नाथपुरी चंदन और कैम्फर कर्पूर ले आने के लिए, और फिर बीच में रेमुना आ जाता है जहाँ पे गोपीनाथ जी की सुंदर विग्रह है, और फिर वहाँ पे एक सुंदर लीला होती है जब वो देखते हैं कि भगवान को यह बहुत विशेष प्रकार का प्रसाद खीर अर्पण की जाती है, तो उनके मन में लालसा आ जाती है कि थोड़ा मुझे भी टेस्ट करने के लिए यदि मिल जाए तो शायद मैं अपने गोपाल जी के लिए भी वैसी खीर बना पाऊँ। तो ये लालसा जब देखते हैं भगवान गोपीनाथ जी, तो वो एक मटका जो उनको ऑफर किया होता है वो मटका छुपा के रख देते हैं, और फिर पुजारी सारे मटकों को ले जाता है और फिर रात को बंद कर देता है मंदिर भगवान को सुला के, और वो मटका वही भगवान के पास ही रहता है। फिर रात को सब जब सो रहे होते हैं पुजारी, तो उनको स्वप्न में जाके कहते हैं कि उठो उठो, तो डर जाते हैं कि अचानक भगवान मेरे सपने में आके मुझे उठो कर रहे। उठ के आते हैं और भगवान कहते हैं कि एक मेरा भक्त है माधवेंद्रपुरी, मैंने उसके लिए खीर का मटका रखा हुआ है मेरे पास चोरी करके, तो आप उसको वो दे देना। तो तुरंत पुजारी स्नान करके ऑल्टर में भगवान के विग्रह में विग्रह के स्थान पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं उनके जो चादर होती है उसके पीछे छुपा हुआ होता है वो मटका, वहाँ से निकालते हैं और पागल हो जाता है पुजारी देख के कि भगवान ने चोरी की, ये तो बड़ा आश्चर्य है। ऑफकोर्स भगवान बहुत चोरियाँ की है भगवान ने जब वो बचपन में यहाँ लीला करते थे तो उन्होंने बहुत चोरियाँ की है, लेकिन ये ज़रा अलग प्रकार की है, एक विग्रह के रूप में चोरी की है जो साधारणतया नहीं देखा जाता। तो जोर जोर से रात को, क्योंकि रात मध्याह्न था, रात के 12 बज चुके थे और वो देख रहे थे सब जगह सुनसान, कोई नहीं है, सब सोए हुए हैं, वो सब रस्तों पे घूम रहे थे दौड़ दौड़ते हुए, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी कहा वो आपके लिए मटका रखा है। तो कितने भगवान ने मधुर मधुर लीलाएं की हैं अपने भक्तों के साथ जो हमेशा हमारे स्मरण में रह सकती है, और हमेशा भगवान का जो प्रेम है वो हम कुछ अंश में महसूस कर सकते हैं अपने हृदय में कि कितना भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। और भगवान के भक्तों का देखिए कितनी शरणागति है अपने भक्तों भगवान के प्रति, कि इतने आगे बढ़े हुए उम्र में भी माधवेंद्रपुरी खुद चलते हुए जाते हैं जगन्नाथपुरी भगवान के लिए सैंडलवुड चंदन और ये लाने के लिए। यदि हमें कोई सेवा बता देता है जब हम थक जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं अभी मत बताओ सेवा, या कई बार तो हम गुस्से से डांट भी देते हैं कि अभी मिला था टाइम तुम्हें सेवा बताने के लिए। लेकिन माधवेंद्रपुरी जी का प्रेम देखिए कि वो हर समय हर परिस्थिति में तैयार है भगवान की सेवा करने के लिए, वो ये नहीं देखते कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, हाँ भगवान ने कहा है जाके ले आओ, मैं ले आ रहा हूँ। तो माधवेंद्रपुरी जब अपनी लीलाओं का अंत कर रहे थे उस समय उन्होंने एक बहुत विशेष श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, उस श्लोक के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि उस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि कैसे माधवेंद्रपुरी ये चैतन्य महाप्रभु जो प्रदान करने आए हैं उसकी शुरुआत उन्होंने की। आई दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वद आलोक कातरम दयित ब्रह्मति किम करोति अहम। दुर्भाग्यवश हमारे मन में ऐसा भाव नहीं है, इसलिए ये श्लोक में जो भाव है वो हम उतार नहीं पाते बोलते समय, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जब माधवेंद्रपुरी ये श्लोक गा रहे थे, आई दीन दयाद्र नाथ है, वो भगवान को पुकार रहे हैं, कह रहे कि हे दीनों के नाथ, आप कहाँ हो जो दीनों के पतितों के ऊपर कृपा करते हो, आप कहाँ हो, मैं ढूंढ रहा हूँ आपको। आई दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हे मथुरा नाथ आप कहाँ पे हो। कहते हैं हृदयम त्वद आलोक कातरम, मेरा हृदय कंपन कर रहा है, लालायित है आपको देखने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए। दयित ब्रह्मति किम करोमि अहम, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं भगवान, इसीलिए अब मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं, ऐसे करके वो प्रार्थना। एक्चुअली ये प्रार्थना श्रीमती राधा रानी ने की है जब भगवान मथुरा वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। जब राधा रानी वो वियोग, जो भगवान से विरह महसूस करती है कि कहाँ है मेरे नाथ, कहाँ है कृष्ण, कहाँ चले गए हमें छोड़कर, वो ढूंढ रही है भगवान को राधा रानी। और तब उस उनकी जो भावना है इस श्लोक के माध्यम से प्रकट की गई है, दिखाई गई है कि राधा रानी कैसे आतुरता से हृदय में इतना कंपन है, एजिटेशन है राधा रानी के कि कहाँ है कृष्ण, मुझे क्यों नहीं दिख रहे कृष्ण, कहाँ चले गए हैं। तो वो भाव माधवेंद्रपुरी पाद जब अपने लीलाओं को अंत कर रहे थे तब उनके हृदय में वो भाव था। और चैतन्य महाप्रभु वही विरह का भाव जो भगवान कृष्ण के प्रति देखा जाता है, पाया जाता है, उस भाव को अनुभव करने के लिए कि क्या मिठास है जो राधा रानी को मिलती है जब वो मुझे देखती है, या मैं उसके सामने नहीं होता हूं तो क्या महसूस करती है राधा रानी अपने हृदय में, उसको अनुभव करना चाहते थे कृष्ण भगवान। और उसी को अनुभव करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त के रूप में आते हैं कि क्या है वो मिठास, क्या है वो प्रेम, क्या होता है अनुभव वो हृदय में, उसको जानने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये जो गोपियों का भाव है, प्रेम है भगवान के प्रति, वो माधवेंद्र पुरीपाद वो दिखाते हैं अपने स्वयं के आचरण से, लीलाओं से, भावनाओं से, प्रेम से प्रकट करते हैं। तो इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु का ये जो संकीर्तन आंदोलन है उसके मूल माने जाते हैं, जो चैतन्य वृक्ष है भक्ति का वृक्ष, उसके मूल माने जाते हैं माधवेंद्रपुरी पाद। बहुत विशेष भक्त है और हमेशा के लिए हम माधवेंद्रपुरी पाद जी को स्मरण करते रहेंगे, क्योंकि ये जो भगवान की चंदन यात्रा की लीला है वो तो शाश्वत लीला है, वो शाश्वत रूप में चलती रहेगी। तो जब तक ये लीला चलती रहेगी तब तक हम माधवेंद्रपुरी पाद जी का स्मरण करेंगे। तो देखिए भगवान कितना गुणगान कर रहे हैं अपने भक्त का, अपने भक्त की भक्ति का, अपने भक्त की शरणागति का, अपने भक्त की सेवा करने के भाव का कितना गुणगान कर रहे हैं भगवान, कि अपने साथ अपने भक्त को भी उन्होंने अमर बना दिया है, कभी ना भूलने वाला ऐसे व्यक्ति बना दिया है। तो ये भगवान की भक्ति का गुण है, विशेषता है कि वो कभी खत्म नहीं होती, समय चलता रहेगा लेकिन भगवान की हुई भक्ति, भगवान की हुई श्रद्धा से, प्रेम से की हुई सेवा वो कभी नष्ट नहीं होती। तो इसीलिए इस दिव्यता को याद रखते हुए हम कोई भी छोटी सेवा क्यों ना हो यदि हम करते हैं तो वो शाश्वत काल के लिए बनी रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। इस भौतिक जगत में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम में भावना से की हुई सेवा कभी नष्ट नहीं होती। प्रहलाद महाराज के बारे में हम वही सुनते हैं कि पिछले जन्म में प्रहलाद महाराज एक विषयी व्यक्ति के रूप में थे और नरसिंह चतुर्दशी का ही दिवस था वो, जब वो अपने जिनसे वो प्रेम करते थे उनको बुलाया था एक जगह पे मिलने के लिए, और वो एक जंगल था, जंगल में वो नरसिंह भगवान का मंदिर था, तो वो उस जगह पे राह देख रहे थे कि वो मेरी प्रेयसी आएगी, मैं उससे मिलूँगा, मैं उससे प्रेम करूँगा, ऐसे करते हुए, और देखा कि सब जगह गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है, तो वो साफ करते हैं, और नरसिंह चतुर्दशी का दिवस होता है, उस दिन उन्होंने मतलब कुछ खाया भी नहीं होता, तो इतनी तपस्या करने की वजह से उनको अगले जन्म में प्रहलाद महाराज का जन्म मिलता है। क्या भक्ति की थी उन्होंने? कुछ नहीं, बस नरसिंह भगवान के उस दिवस पे फास्टिंग की, वो भी भगवान के लिए नहीं की थी, किसी और कारण की वजह से हुई थी और झाड़ू करके उन्होंने जगह साफ कर दी थी, वो भी किसी और उद्देश्य से करी थी, ना कि नरसिंह भगवान के दिव्य अवतार का दिवस है इस भावना से। लेकिन अगली बार उन्हें प्रहलाद महाराज जैसे जन्म मिला और भगवान की भक्ति करने का मौका मिला, नारद मुनि जी की कृपा मिली। तो थोड़ा भी कुछ हम भगवान के लिए बड़ी श्रद्धा से प्रेम से करते हैं, ये तो श्रद्धा और प्रेम से था ही नहीं, फिर भी इतना फर्क, इतना उसका लाभ। तो यदि हम श्रद्धा से प्रेम से एक सेवा भाव के भावना से यदि करते हैं तो हम सोच ही नहीं सकते हमें उसका कितना लाभ होगा। इसीलिए हमेशा भगवान की सेवा एक दिव्य सेवा है इस रूप में हमें करनी चाहिए, ना कि कोई कार्य है, हाँ ठीक है कार्य है, हर दिन करते हैं ऐसे, इसलिए हम आज भी कर रहे हैं, ऐसे भाव से नहीं। बड़े सावधानी से अच्छी तरह से हम यदि भगवान की सेवा करते हैं कोई भी, तो ज़रूर भगवान उस चीज़ को याद रखते हैं और हमें कृपा प्रदान करते हैं। और आज श्रीनिवास ठाकुर जी का भी आविर्भाव दिवस है, उनका जन्म ही बहुत दिव्य है श्रीनिवास ठाकुर जी का। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कटवा में सन्यास लेते हैं तो उस समय सन्यास लेते समय बहुत कम लोगों को पता था कि वो सन्यास लेने वाले हैं, क्योंकि रात को सची माता जब सो रही थी तब चैतन्य महाप्रभु उठ जाते हैं घर छोड़ने के लिए, और जब उठ जाते हैं तब सची माता को पता चलता है कि मेरे पुत्र जा रहे हैं, तो सची माता वहाँ पे आती है तो भगवान उनके चरणों को स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेते हैं और माँ को कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, और माता कुछ कह भी नहीं पाती, वो बस स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि वो जो विरह है भगवान के प्रति, प्रेम उनका इतना अगाध है, वो एक जैसे पेड़ का तना होता है, खड़ा रह जाता है, कुछ कहता नहीं, कुछ बोल नहीं सकता, वैसी अवस्था हो जाती है माता की। और माता को प्रदक्षिणा करते हुए चैतन्य महाप्रभु निकल जाते हैं और कटवा में आकर वो सन्यास ले रहे होते हैं, तो बहुत गिने चुने भक्त होते हैं, उसमें से एक भक्त होते हैं, उनका नाम होता है गंगाधर भट्टाचार्य। हाँ, गंगाधर भट्टाचार्य ये चखंडी ग्राम से होते हैं, तो वो भी उस समय होते हैं चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त है गंगाधर भट्टाचार्य। और जब चैतन्य महाप्रभु के जो सुंदर रेशम जैसे सॉफ्ट ऐसे बालों को जब वो काट रहा होता है तब भक्तों को देख नहीं पाते उस दृश्य को, क्योंकि इतना प्रेम होता है महाप्रभु के प्रति, उनके जब बाल ऐसे एक 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 करके गिर रहे होते हैं, मानो ऐसे भक्तों को लग रहा था मानो उनके हृदय में कोई चाकू चला रहा हो, क्योंकि इतने सुंदर भगवान के केश हैं और इतने सुंदर रूप से भगवान दिखते होंगे उस बालों के साथ, अब वो कट रहे हैं तो भक्तों को बहुत दर्द होता है, दुख होता है। और ख़ासकर ये जो गंगाधर भट्टाचार्य होते हैं, वो जब उन बालों को कटते हुए देखते हैं और वो नाम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु का, श्री कृष्ण चैतन्य, ये जो सन्यास का नाम सुनते हैं, तो इतना हृदय में उनको प्रभाव पड़ता है उसके वजह से कि उनके मुंह से हाँ चैतन्य, हाँ चैतन्य, हाँ चैतन्य, हाँ चैतन्य ऐसे ही निकलने लगता है। और वो जो अवस्था होती है उनकी, वो अवस्था को देखकर उनका निकनेम एक द्वितीय नाम पड़ जाता है, चैतन्य दास करके। तो चैतन्य दास और उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया, वो चखंडा में रहते थे, तो एक दिन अचानक उनके हृदय में इच्छा आती है कि हमें संतान चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। अब वो सोचते हैं ऐसी इच्छा ये क्या करे, तो वो एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते हुए निर्णय लेते कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए वो निकलते हैं वहाँ से, और जाजीग्राम होते हुए जहाँ उनकी उनके पिताजी मतलब लक्ष्मी प्रिया के पिताजी रहते थे, वहाँ से वो जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़ते हैं। और जगन्नाथपुरी में जब आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु से कुछ कहने के पहले ही चैतन्य महाप्रभु उन दोनों की ओर देखते हुए कहते हैं कि जगन्नाथ देव तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। सारे भक्त बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, ये जो चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया आए हैं उनकी क्या ऐसी कौन सी इच्छा है जो चैतन्य महाप्रभु ने पूरी होने के लिए आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं, चैतन्य महाप्रभु बस इतना कह दे कि जगन्नाथ देव आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। तो सब लोग खुसुर पुसुर एक दूसरे से बात कर रहे होते कि क्या कौन सी इच्छा है, कौन सी इच्छा है, तो किसी को पता नहीं होता है कौन सी इच्छा है। फिर वो गोविंद के पास जाते हैं, बोलते गोविंद तुम्हें तो कुछ पता होगा शायद कि महाप्रभु ने कौन सी इच्छा को पूरी करने के लिए आशीर्वाद दिया है। वो बोलते मुझे भी पता नहीं। तो पता करने के लिए गोविंद देव गोविंद जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, तो चैतन्य महाप्रभु खुद कहने लगते हैं, वो कहते हैं कि इन दोनों के हृदय में इच्छा है पुत्र प्राप्त हो करने की, और इन दोनों को एक बहुत दिव्य विशेष पुत्र प्राप्त होने वाला है जिसका नाम आगे जाकर श्रीनिवास होगा, और ये व्यक्ति जो गोस्वामी जी ने लिटरेचर्स जो शास्त्र लिखे हुए हैं उन शास्त्रों का अध्ययन करके उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसका वितरण करेंगे, ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु गोविंद को बोल देते हैं। और फिर गोविंद आके सब भक्तों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे महाप्रभु ने आगे का भविष्यवाणी की है कि ऐसे श्रीनिवास करके एक पुत्र जन्म लेने वाले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद लेते हुए, जगन्नाथ जी के आशीर्वाद लेते और सारे भक्तों के आशीर्वाद लेते हुए चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया वो वापिस चखंडी चले जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद फिर उन्हें आज के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन एक पुत्र प्राप्ति होती है जिसका वो नाम देते हैं श्रीनिवास। और देखिए कितना विशेष है श्रीनिवास आचार्य जी इनका आविर्भाव। चैतन्य महाप्रभु यहाँ तक कहते हैं गोविंद को, वो कहते हैं कि मैं मेरी पूरी शक्ति, मेरा पूरा जो प्रेम है मैं इस बालक को देने वाला हूँ। तो ये बालक जो है मुझसे अभिन्न होगा, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उस बालक के बारे में बोलते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य वही गौर शक्ति को प्राप्त किए हुए महान आचार्य हैं, जिन्होंने गोस्वामी जी के सुंदर सुंदर जो ग्रंथ है उसका उन्होंने अध्ययन किया और फिर अपने दो संगियों के साथ नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित इनके साथ उन ग्रंथों को लेकर वो उड़ीसा और बंगाल चले जाते हैं उन गोस्वामियों के ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने के लिए, वितरण करने के लिए। तो बड़े ही विशेष योगदान है श्रीनिवास ठाकुर का। उनकी जीवन के बारे में बहुत कुछ है सुनने के लिए और हमारे जीवन में सीखने के लिए, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जन्म ही उनका कृपा से हुआ है और बचपन से ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है अपने स्वयं पिता के माध्यम से और भी जो वहाँ के भक्त थे, नरहरि सरकार, रघुनंदन ठाकुर श्रीखंड में रहते थे, उन भक्तों से और नवद्वीप के भक्तों से सबसे उन्होंने हमेशा चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है, लेकिन कभी चैतन्य महाप्रभु को देखने का उनका मौका नहीं मिला, उनको कभी नहीं मिला। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जरूर प्रकट हुए उनके सामने उनके स्वप्न में। तो जब उनके पिताजी नहीं रहते, चैतन्य दास चले जाते हैं, तो अपनी माता को लेके अपने माता के घर पे जाजीग्राम में आ जाते हैं श्रीनिवास, और फिर वो अपनी माता को प्रार्थना करते हैं कि माता मैं जाना चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो माता कहती है जाइए, लेकिन जब वो अपनी जर्नी करते हुए जगन्नाथपुरी पहुँच जाते हैं इस लालसा से कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन लूँगा, उनको न्यूज़ पता चलती है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला को विराम कर दिया है। अब जब ये सुनते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक वो बस महाप्रभु के बारे में सुनते आ रहे सुनते आ रहे सुनते आ रहे सुनते आ रहे, अब समय आ गया है उनको देखने के लिए, दर्शन लेने के लिए, उनको पता चलता है कि महाप्रभु अपनी लीला को विराम दे चुके हैं। इतना दुख होता है उनको हृदय में, हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि उतना प्रेम हमारे पास नहीं है उस कल्पना को करने के लिए। लेकिन जितना हद तक हम प्रेम होगा उतने हद तक हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना हृदय में दुख महसूस कर रहे होंगे, विरह महसूस कर रहे होंगे कि मुझे महाप्रभु के दर्शन भी प्राप्त नहीं हुए। उस अवस्था में वो निर्णय लेते हैं कि क्या उपयोग है मेरे जीवन का, जिनके बारे में मैं सुनते हुए मेरे जीवन की जो आशा है, मैंने इच्छा है रखी हुई, वो इच्छा अब मेरी पूरी नहीं हो सकती, अब मुझे जीवित रह के क्या फायदा। ऐसे सोचते हैं मन में कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा, मेरे जीवन को त्याग कर दूंगा, और ऐसे सोचते हुए वो मूर्छित हो जाते हैं। अब जब मूर्छित हो जाते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होते हैं और उनको सांत्वना देते हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, यदि तुम्हें मेरा दर्शन साक्षात दर्शन नहीं मिल रहा, लेकिन मैं अभी तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ, आप थोड़े समय जगन्नाथपुरी में रहो, गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो और फिर उसके बाद वापिस जाओ। तो वही करते हैं श्रीनिवास आचार्य, वहाँ सारे जो भक्त है चैतन्य महाप्रभु के उन सबको मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और जो टोटा गोपीनाथ मंदिर है जहाँ पे गदाधर पंडित विराजमान थे अपनी सेवा करते हुए, वो भी इतने विरह रूप में थे क्योंकि महाप्रभु चले गए हैं, वो भी टोटा गोपीनाथ मंदिर में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उन श्री विग्रह में विलीन हो जाते हैं। आप यदि जाएंगे वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रैक है, उस क्रैक के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु उस श्री विग्रह में विलीन हो जाते हैं। तो टोटा गोपीनाथ जो है वो चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। तो वहाँ पे श्रीमद् भागवतम का कथा हर दिन वो पढ़ते थे, तो श्रीनिवास आचार्य सुनते थे गदाधर पंडित से, वो पढ़ भी नहीं पाते थे क्योंकि आंखों से हमेशा उनके आंसू आते थे जब वो महाप्रभु को याद करते थे। तो कुछ समय वो रहने के बाद वो वापस जाजीग्राम आते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं नवद्वीप जाऊंगा, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, इन सारे भक्तों को मिलूंगा, उनके आशीर्वाद लूंगा। ऐसे सोचते हुए फिर से वो नवद्वीप की तरफ बढ़ते हैं। अब जब नवद्वीप के पास पहुँचते हैं तब उनको सुनने में आता है कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु दोनों ही अपनी लीलाओं को विराम कर चुके हैं। उनको इतना दुख लगता है, अरे जब मैं किसी महान भक्त के दर्शन लेने जा रहा हूँ, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, वो है नहीं, चले गए। बड़ा दुख होता है उनको हृदय में। वो सोचते हैं कि महाप्रभु भी नहीं मिले मुझे देखने के लिए, और यहाँ नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, उनका भी संग अब नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मेरे जीवन का उपयोग क्या है। ऐसे सोचते हुए वो मन में निर्धार करते कि मुझे ये शरीर अंत कर देना है। और उसी रात को स्वप्न में नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु प्रकट होते हैं। श्रीनिवास को कहते हैं कि तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण सेवा करनी है, तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत विशेष उद्देश्य रखा गया है, उस विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम्हें ब्रज में, वृंदावन में जाना चाहिए। और श्री रूप सनातन, श्री जीव गोस्वामी, जो गोस्वामी है, उनके शरण में रहते हुए तुम्हें वहाँ पे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा। तो ये आदेश मिलने के बाद वो जाते हैं, अपनी माता से आदेश लेते हैं और वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब वृंदावन जाते हैं तो जैसे ही वृंदावन पहुँचते ही है, वैसे ही उनको सुनने को मिलता है कि रूप और सनातन गोस्वामी, इन्होंने अपनी लीलाओं को विराम दे दिया है। अब जब ये सुनते हैं श्रीनिवास ठाकुर कि रूप और सनातन भी नहीं रहे, इतना दुख होता है। वो सोचते हैं कि जो मेरे जीवन का उद्देश्य है वो मैं पता करने के लिए यहाँ आया हूँ, और जिनसे पता करना है वही नहीं है, रूप और सनातन चले गए, मैं क्या करूँगा, क्या मेरे जीवन का क्या है। ऐसे सोच रहे होते हैं तो रूप और सनातन उनके सामने प्रकट हो जाते हैं बड़ी कृपा से, और कहते हैं कि महाप्रभु के जो आंदोलन है उसके लिए जो हमने बहुत मेहनत करते हुए ग्रंथों की रचना की है, उस ग्रंथों का आप अध्ययन करो जीव गोस्वामी के आदेशानुसार, और उन ग्रंथों का आप प्रचार प्रसार करो। ऐसे करके उनको आदेश मिलता है। तो फिर जीव गोस्वामी के चरणों में उस समय गोपाल भट्ट और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये दोनों वहाँ पे होते हैं ब्रज में, और जीव गोस्वामी होते हैं, बाकी सब चले गए होते गोस्वामी, तो उनके सानिध्य में रहते हुए उन सारे ग्रंथों का वो अध्ययन करते हैं। और उनके साथ नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, ये दोनों भी होते हैं। तो जीव गोस्वामी इन तीनों को सुंदर तरीके से शिक्षा प्रदान करते हैं और फिर उनको उन सारे ग्रंथों के साथ भेज दिया जाता है बंगाल में और उड़ीसा में प्रचार प्रसार करने के लिए। मैं बहुत गहराई से नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि सामने मेरी घड़ी है, तो मुझे टेंशन आ रहा है कि मैंने अभी तक राधा रमन जी के बारे में कुछ वर्णन शुरू ही नहीं किया, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य के बारे में इतना गहराई से हमें जानकारी है, कितने सुंदर सुंदर तरीके से उन्होंने प्रचार किया है, कितने सुंदर रूप से उन्होंने भगवान के साथ लीलाएँ की है, बहुत सुंदर है। लेकिन समय के अभाव से मैं उसमें जा नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन, एक बार मैं यदि घुस जाऊंगा तो फिर बाहर निकल नहीं पाऊंगा आसानी से, और समय चला जाएगा, मैं फिर कुछ भी नहीं बात कर पाऊंगा गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में, क्योंकि आज राधा रमन जी का बहुत सुंदर दिव्य रूप प्रकट हुआ है। तो श्रीनिवास आचार्य जब आते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि एक जगह पर, क्योंकि वो बुलक कार्ट में, बैलगाड़ी में उन्होंने ग्रंथ लाए होते हैं, और रात को थकने की वजह से सो जाते हैं, और वहाँ पे एक बिरंबी राजा होता है, मतलब राजा क्या, वो डकैतों का लीडर होता है एक प्रकार से। वो उसे अपने ज्योतिषी के माध्यम से पता चलता है कि अभी जो प्रवास करने वाले जो यात्रीगण हैं उनके पास बहुत बहुमूल्य धन है। तो बड़ा लालची हो जाता है कि अरे बहुत बहुमूल्य धन है, तो जाके रात को चोरी कर लेता है सारे ग्रंथों को। अब सब भक्त लोग सुबह उठ जाते हैं, और जब उठते हैं तो बैलगाड़ी में जाके देखते हैं तो खाली बैलगाड़ी। इतने सारे कष्टों से सारे गोस्वामियों ने अपने हाथों से बैठ बैठ के लिखे हुए वो दिव्य ग्रंथ वो सब गायब हो गए। बहुत दुख होने लगता है, वो एक दूसरे को स्वयं को कोसने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्या ऐसा हुआ था कि हम रात को सो गए, पता नहीं कहाँ गए ग्रंथ, किसने चोरी कर लिए। तो श्रीनिवास ठाकुर कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत करो, मैं यहीं पे रुकूंगा और उन ग्रंथों को ढूंढ निकालूंगा किसी भी हालत में। और फिर वो श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर को भेज देते हैं, बंगाल और उड़ीसा में जाके आप प्रचार करो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। और फिर भगवान की योजना से उन्हें पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे भीरमबीर नाम के एक डकैत है जिन्होंने चोरी की है। तो फिर श्रीनिवास ठाकुर उनसे मिलकर वाद विवाद करते हैं, बहुत कुछ होता है, डिटेल में लीला है कि कैसे उनको हरा के उनको अपने शिष्य बना लेते हैं वो। और फिर उनके उनसे सारे ग्रंथों को वापिस प्राप्त करके फिर वो बंगाल और उड़ीसा के लिए निकल पड़ते हैं। तो श्रीनिवास ठाकुर इनकी साक्षात में संक्षिप्त में ये सुंदर लीलाएं हैं। और श्रीनिवास ठाकुर ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य हैं, उन्होंने उनसे दीक्षा ली। और गोपाल भट्ट गोस्वामी इनका जीवन बहुत विशेष है, चैतन्य महाप्रभु की बहुत विशेष कृपा है गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर। उनके शुरुआत के जीवन में मैं नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। तो हम राधा रमन जी के जो आविर्भाव है उस समय आते हैं सीधे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनको चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत विशेष सेवा दी होती है। उनको कहा होता है कि जब आप वृंदावन में रहोगे तो वृंदावन में जो भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हुई है, उन लीलाओं के जो स्थल है, जगह है, उन जगहों को आप फिर से ढूंढ निकालिए और उसको स्थापित कीजिए, वहाँ पे अर्चना पूजा अर्चना स्थापित कीजिए। क्योंकि बहुत समय पहले जब श्री भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने भगवत धाम चले जाते हैं, तो उनके ग्रेट ग्रैंडसन, पुत्र के भी पुत्र, पौत्र के भी पौत्र, जो वज्रनाभ होते हैं, वो क्या करते हैं, वृंदावन में भगवान की जहाँ जहाँ भी लीलाएं होती है वहाँ वहाँ पे भगवान के सुंदर सुंदर शिव विग्रहों की स्थापना करते हैं। वो एक याद रहे करके कि भगवान ने यहाँ पे लीला की थी, ये वाली लीला की थी, भगवान ने यहाँ पे ये वाली लीला की थी करके। तो उस समय से 4,500 साल पहले से वो भगवान के विग्रह विद्यमान थे उन जगहों पे। लेकिन जैसे समय बीतता गया और बीच में औरंगजेब आए थे और बहुत कुछ हुआ था, तो ये विग्रह कहाँ गायब हो गए थे पता नहीं था किसी को। तो उन विग्रहों को ढूंढ निकालना, फिर से उनकी फिर से स्थापना करना, ये सेवा दी गई थी। तो रूप गोस्वामी श्री राधा गोविंद देव को प्रकट करते हैं फिर से, और सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन जी को प्रकट करते हैं फिर से हम सबके दृष्टि में। और गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके पास कोई विग्रह नहीं होते। एक बार जब वो पिलग्रिमेज मतलब यात्रा करने के लिए जाते हैं, तब पहले हरिद्वार की तरफ निकलते हैं। हरिद्वार की तरफ जाते जाते सहारनपुर पड़ता है। सहारनपुर के वहाँ पे एक गांव है, उस गांव का नाम बहुत टिपिकल। हाँ, देववंद्य ये गांव का नाम है, वहाँ पे रात को रुकते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। और जो ब्राह्मण होते हैं वो बड़े ही भगवान के भक्त होते हैं और बड़ी सुंदर प्रकार से सेवा करते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनकी सेवा से और उनको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं। अब जब वो सुनते हैं ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते, तो वो कहते हैं कि हे गोस्वामी जी, मेरा जो पहला पुत्र होगा मैं आपकी सेवा में अर्पित करूँगा, ऐसे कहते हैं। फिर वहाँ से हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार में दर्शन लेते हैं, स्नान करते हैं और फिर वहाँ से नेपाल चले जाते हैं गंदकी नदी में स्नान करने के लिए। अब जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ पे स्नान करते हैं, और क्योंकि पूजा करते समय हम पानी ऐसे अपने हाथों में लेते हैं और उस पानी को हम उस नदी में बहा देते हैं अर्पण करने के लिए, जैसे हम फूलों को अर्पण करते हैं वैसे पानी से ही उस गंदकी नदी का वो अभिषेक कर रहे थे उसी पानी से। तो ऐसे कर रहे थे पूजा करते समय, तो जब पानी ऐसे उठा लेते हैं तो देखते हैं कि उनके हाथों में गोवर्धन अपने शालिग्राम शिला आ जाती है। तो उनको लगता है अरे गलती से मैंने उठा ली शालिग्राम शिला, वो फिर से उसे छोड़ देते हैं और फिर से हाथों से पानी उठाने जाते हैं, तो फिर से देखते हैं कि वो शिला उनके हाथों में फिर से आ गई, फिर से वो छोड़ देते हैं उसे, बार बार शिला क्यों हाथ में आ रही है। फिर से तीसरी बार उठाते हैं तो वो शालिग्राम शिला फिर से उसके हाथों में आ जाती है। जब ऐसा तीन बार हो जाता है तब वो समझ जाते हैं कि ये शालिग्राम शिलाएँ जो है वो चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं। तो 12 शालिग्राम शिला होती है वो, तो उनको वो एक झोली बनाते हैं, कपड़े की झोली, उसमें रखते हैं और फिर वो लेके आते हैं वृंदावन में। और जो सेवा कुंज का एरिया है वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे वो रहते थे, तो वहाँ पे वो सेवा करते थे उन शालिग्राम शिला की। तो वृंदावन में ब्रज में कोई ना कोई आते रहते थे, क्योंकि वो ऐसे ये एरिया बहुत बिल्कुल क्या कहते हैं जैसे फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है उस प्रकार का एरिया था। अभी तो यहाँ जंगल कहीं नहीं दिखता बिल्कुल उल्टा हो गया है, कंक्रीट जंगल हो गया है वृंदावन, लेकिन उस समय वो बिल्कुल जंगल था, कोई मतलब बहुत कम लोग रहते थे यहाँ पर, ज़्यादातर लोग रहते थे वो तपस्या करने के लिए ही होते थे यहाँ पे, और वो पेड़ों के नीचे ही खुश थे, कोई किसी का घर नहीं बनता था ना किसी का कुछ आश्रम बनता था, बस पेड़ों के नीचे बैठो भजन करो, यमुना पास ही में जाओ स्नान करो आओ भजन करो, बस यही था। तो वो भी यही करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, और शालिग्राम की सेवा करते थे। तो एक समय एक रिच बहुत अमीर व्यापारी आते हैं वृंदावन में, और जो अलग अलग गोस्वामियों के पास जो विग्रह है भगवान के उनकी सेवा के लिए वो कुछ कपड़े और जेवरात देते हैं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों के पास तो बड़े सुंदर सुंदर विग्रह हैं, तो बड़ी अच्छी तरीके से वो उनका उपयोग करते थे उन कपड़ों का और ज्वेलरी का। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास तो वो तो शिला थी गोल गोल शालिग्राम शिला, अब उनको कैसे वो ज्वेलरी पहना सकते या कपड़े पहना सकते, नहीं पहना सकते। तो एक दिन जब वो ऐसे सेवा कर रहे थे तो क्योंकि उनको प्राप्त हुई थी तो इसलिए उन्होंने उस वस्त्र को और उन ज्वेलरीज को शालिग्राम शिला के सामने रख दिया और मन में वो इच्छा करने लगे कि भगवान यदि आपका कोई रूप होता तो ज़रूर मैं इस वस्त्र और इस ज्वेलरी के साथ आपकी बहुत अच्छी तरह सेवा कर पाता, ऐसे करके उन्होंने उस वस्त्र को भगवान को अर्पित करते हुए उनके सामने रख दिया। पहना तो नहीं सकते थे उनको क्योंकि वो शिलाएँ थी, और फिर भगवान को वो रात को सुला दिए उस झोली में, एक बास्केट में रखते हुए झोली को, और उसको एक पेड़ पे लटका दिए। और फिर अपना भजन करते हुए थोड़ा सा रात को प्रसाद लिए और फिर सो गए। और वो कल का दिन था नरसिंह चतुर्दशी का, जब उन्होंने ऐसी इच्छा मन में अपने प्रकट की। और सुबह उठ के फिर जमुना गए, स्नान वगैरह करते हुए आए और सोचा कि अब शालिग्राम जी को उठाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और जब उठाने के लिए वो झोली को नीचे रखते हैं और खोलते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत दिव्य रूप उनको सामने दिखाई देता है, राधा रमन जी का। बहुत सुंदर त्रिभंग रूप में ऐसे प्रकट होते हैं, उस शिला से प्रकट हुए होते हैं और इतना सुंदर उनका रूप है। जब देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी उस दिव्य रूप को, वो अपने आप को ये नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, इतने उनको आंखों से आंसू बहने लगता है और वो दंडवत करने लगते हैं बार बार भगवान का उस दिव्य रूप को देखते हुए, और बहुत सुंदर सुंदर रूप से प्रार्थना करने लगते हैं वो भगवान का, गुणगान करने लगते हैं कि भगवान कितने आप कृपालु हो, कितने दयालु हो, आपने इतने सुंदर रूप से हमें दर्शन दिया है, प्रकट किया है अपने आप को। और तुरंत ये बात फैल जाती है सब जगह, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और भी सही सब गोस्वामी आ जाते हैं, वैष्णवगण आते कि एक बहुत सुंदर चमत्कार हुआ है, भगवान ऐसे ऐसे प्रकट हुए हैं। तो सब लोग आते हैं दर्शन लेने के लिए। बहुत छोटा सा सुंदर सा विग्रह है, आप देखेंगे आज यदि जा सकते हैं तो जाकर आप सुंदर दर्शन ले सकते हैं राधा रमन जी का। और रूप और सनातन जब देखते हैं उस विग्रह को वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ये राधा रमन जी है, ये भगवान के जो तीन विग्रह है उसका कंबाइंड फॉर्म है, जो राधा मदन मोहन है, राधा गोविंद है और राधा गोपीनाथ है, इन तीनों का मिश्रण है ये राधा रमन जी। जो चरण है वो राधा मदन मोहन जैसे हैं, जो छाती का वक्षस्थल का है वो राधा गोपीनाथ की तरह है, नहीं राधा गोविंद की तरह है, और जो सुंदर विग्रह चेहरा जो है वो राधा गोपीनाथ की तरह है। जो हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन विग्रह है, तो इन तीनों का सुंदर रूप एकत्रीकरण राधा रमन जी है। इतना सुंदर रूप है, जब देखते हैं सब भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, और यही स्वभाव है राधा रमन जी का। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहते हैं क्योंकि ये रमन रेती एरिया में प्रकट हुए हैं और सबको प्रसन्न करने के लिए प्रकट हुए हैं, इसीलिए इनका नाम आज से होगा राधा रमन देव। राधा रमन देव जी की। और कितना आनंद होता है गोपाल भट्ट गोस्वामी को, उनके प्राणधन बन जाते हैं राधा रमन जी। और फिर ऐसे ही सेवा करते करते 10 साल बाद अचानक एक दिन एक नौजवान लड़का वहाँ पे आ जाता है गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम करता है तो बड़े आश्चर्यचकित होता है, ये कौन सा लड़का, ये कहाँ से आ गया। उसको पूछते तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो वो कहता है कि मैं वो जो देववन्य ग्राम है वहाँ से मैं आया हूँ और मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है आपके पास आपकी सेवा करने के लिए। और तब गोपाल भट्ट गोस्वामी को याद आता है, अरे हाँ, जब मैं परिक्रमा यात्रा करने गया था तो वहाँ पे सहारनपुर के पास ये देववन्य ग्राम में उस ब्राह्मण के घर में रुका था, तो उस ब्राह्मण ने अपना जो पहला पुत्र होता है उसको गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में सेवा में अर्पित कर देते हैं और उनका नाम होता है गोपीनाथ। तो आगे जाके वो ब्रह्मचारी रहते हैं हमेशा, गोपीनाथ पुजारी गोस्वामी करके उनका नाम बन जाता है, और वो पूरे जीवन भर वहीं पे गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा करते हुए राधा रमन जी की सेवा करते हैं। तो और भी बहुत है आगे उनके बारे में, राधा रमन जी के बारे में, लेकिन समय हमारा ज़्यादा ही हो गया है, मैं ओवर टाइम चला गया हूँ, लेकिन इन भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में हम कितना भी श्रवण करें उतना कम है, क्योंकि इन लीलाओं में जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो कभी अंत नहीं होती। उसमें जो मिठास है वो कभी अंत नहीं होती। तो जितना भी हम सुनते रहे उतना कम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सारी लीलाओं को हम श्रवण जब करते हैं तो हमारे हृदय में एक प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान इन सब भक्तों के हृदय में, इन सब आचार्यों के हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है, सेवा भाव है, वो कुछ अंश मात्र में मेरे हृदय में भी आए, ताकि मेरा जीवन एक उपयोगी जीवन बने आपके लिए, आपकी सेवा के लिए। तो यही प्रार्थना के साथ हम आज यहाँ पे विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्री राधा रमन देव जी की, श्री परमेश्वरी ठाकुर की, श्रीनिवास आचार्य की।